ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिश को 100% क्रियान्वित करने की प्रधानमंत्री प्रचंड ने जताई प्रतिबद्धता। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 6.5 किलो सोने के साथ 3 विदेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। और अमेरिका के टेनेसी राज्य में आंधी के कारण कम से कम 6 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को 100% लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। 75वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि वो आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने का प्रयास करेंगे। संक्रमणकालीन न्याय में देरी होने की बात बताते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय सहमति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि वो मानवाधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने मुआवजे के लिए आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अगले साल से अलग बजट की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष मगर ने कहा कि संक्रमणकालीन न्याय से संबंधित प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने की जरूरत है। दिवस के मौके पर आयोग ने बाजरा के प्रकाश बहादुर सिंह को मानवाधिकार पुरस्कार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भवानी सिंह कोयराला को दयाराम स्मृति सम्मान से सम्मानित किया। दोनों पुरस्कार की राशि 50,000 रूपये है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय द्वारा आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि नेपाल पक्ष राष्ट्र है और मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय महासंधि तथा नेपाल सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 3 तहों और अन्य संबंधित निकायों के बीच समन्वय करना जरूरी है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जिनमें नेपाल पक्ष राष्ट्र है द्वारा निर्धारित मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को नेपाल के संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय होना जरूरी है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हा लगायत उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति थी। त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालय ने त्रिभुवन विमानस्थल से 6.5 किलो सोने सहित विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। भंसार कार्यालय और त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय की टोली ने बीती रात दुबई से लाए गए 6 किलो 590 ग्राम सोने सहित इजिप्ट के नागरिक मोहम्मद मोगामद लसीम को गिरफ्तार किया है। कार्यालय ने सोने कारोबारी के संबंध में अन्य 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। संसदीय सुनवाई समिति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पदों के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों से आज विचार विमर्श किया। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पदों के लिए सिफारिश किए गए सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा, टेक प्रसाद ढुंगाना, सुनील कुमार पोखरेल और बालकृष्ण ढकाल के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के विषय में आज विचार विमर्श किया। बता दें कि प्रस्तावित न्यायाधीशों के विरुद्ध 10 शिकायतें दर्ज हुई थी। उनमें से 7 शिकायतकर्ताओं के साथ समिति ने आज बातचीत की। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। आज सुबह प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में उनके बीच संविधान के मुताबिक संघीय कानूनों को बनाए जाने के विषय पर विचार विमर्श हुआ। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के मुखपत्र नेपाल पुकार 26 साल के बाद पुनः प्रकाशित हुआ है। विक्रम संवत 2004 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होने से पहले से ही छपता रहा नेपाल पुकार विक्रम संवत 2054 में आकर बंद हो गया था। उसे आज से पुनः प्रकाशित किया गया है। नेपाली कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग द्वारा आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में आयोजित कार्यक्रम में पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि नेपाल पुकार के माध्यम से कांग्रेस की गतिविधि जनता तक पहुंचेगी। एनसेल के शेयर खरीद बिक्री अध्ययन तथा छानबीन समिति ने आज से औपचारिक रूप में काम करना शुरू किया है। नेपाल सरकार से प्राप्त कार्यादेश के भीतर रहकर निर्धारित समय सीमा के अंदर अध्ययन और छानबीन करके सुझाव सहित रिपोर्ट पेश करने के हिसाब से अध्ययन शुरू किया गया है। ये बात समिति के संयोजक टंकमणि शर्मा दंगाल ने बताई। बता दें कि समिति ने एनसेल शेयर खरीद बिक्री के मामले से संबंधित तथ्यपरक सूचना और प्रमाण समिति को उपलब्ध कराकर अनुसंधान में सहयोग करने का खुला आह्वान भी किया है। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। बांसवाड़ी स्थित शहीद गंगालाल हृदय केंद्र में इलाज के लिए भर्ती हुए गृह मंत्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य लाभ के बाद आज डिस्चार्ज हुए। ये जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने दी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा है कि परिवर्तन के लिए श्रमिकों रोजगारदाता और सरकार के बीच समन्वयात्मक पहल आवश्यक है। आज काठमांडू में आयोजित UNI-NLC के 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्री भंडारी ने कहा कि नेपाल के परिवर्तन में ट्रेड यूनियनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और परिवर्तन को संस्थागत बनाने के लिए श्रमिकों रोजगारदाताओं और सरकार के बीच समन्वयात्मक पहल आवश्यक है। सम्मेलन में नेपाल के साथ ही अमेरिका स्वीडन जापान लगात के ट्रेड यूनियन संबद्ध प्रतिनिधियों की सहभागिता थी। पोखरा में स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई है। पोखरा 26 स्थित सुंदरी बाजार स्थित कार से स्कूटर टकराने से पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 25 हेमजा की 23 वर्षीय अनिशा खड़का और पोखरा 5 की 24 वर्षीय भावना बराल की मौत हो गई। ये जानकारी कास्की के DSP श्रवण कुमार बीका ने दी। बता दें कि कार के चालक पोखरा अघो के मन बहादुर बानिया को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के टेनेसी राज्य में भीषण तूफान के चलते 6 लोगों की मौत हो गई है और 23 अन्य लोग घायल हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार शनिवार दोपहर को मोंटो गोमरी कमाउंटी बवंडर आने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि टेनेसी की राजधानी नैशविल के उपनगरीय इलाके में 3 और लोगों की मौत हो गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिश को 100% क्रियान्वित करने की प्रधानमंत्री प्रचंड ने जताई प्रतिबद्धता। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 6.5 किलो सोने के साथ 3 विदेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार और अमेरिका के टेनेसी राज्य में आंधी के कारण कम से कम 6 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शिवरात्रि।